स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार के साथ साथ एक प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसमें हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में विचार करने के साथ साथ अंतरंग में झांक कर अपने व्यवहार के बारे में देख रहे हैं और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों इस प्रक्रिया में दूसरे के संदर्भ में अपने को देखने की आदत बदल ली है। अब हम अपने ही संदर्भ में अपने आप को देखते हैं। इतना ही नहीं, हमारी अपनी क्षमता, जो आंतरिक क्षमता है, वो भी इस प्रक्रिया में बढ़ गई है। हमें इस भौतिक सुखों की, संसार की सुखों की सीमा मालूम पड़ गई है। हमारे भीतर जो आत्म सुख है वो असीम है, लेकिन मैं अपनी उस असीम संपदा को भूलकर इस बाह्य भौतिक सुखों में ही अपने आप को उलझा बैठा हूँ, ऐसा विचार मन में आने लगा है। और धीरे धीरे करके हम घृणा से प्रेम की तरफ, ईर्ष्या से मैत्री की तरफ, क्षोभ से साम्य भाव की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारी प्रतिक्रिया अब हम देखते हैं कि जैसे पहले बहुत कटुतापूर्ण प्रक्रिया होती थी, अब वो प्रतिक्रिया बहुत सौहार्दपूर्ण होने लगी है। हमने इस समता की साधना की प्रक्रिया के दौरान इन सब चीज़ों को अपने जीवन में परिवर्तित होते हुए स्वयं अनुभव किया है, कर रहे हैं। हम इसी प्रक्रिया में और एक कदम आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारे भीतर और कौन कौन सी संभावनाएं हैं, हमारे भीतर ऐसी और कौन सी क्षमताएं हैं जिनका कि उद्घाटन किया जाना संभव है। हम अपनी उस योग्यता को पहचाने। कई बार ये होता है कि हमारी अपनी वस्तु हमें ज्ञात ना होने पर हम उससे स्वयं वंचित रह जाते हैं। एक भिखारी जीवन भर रास्ते के किनारे बैठा बैठा भीख मांगता रहा, दो पैसे, पांच पैसे उसके लिए हाथ फैलाता है। एक दिन उसकी सांसें पूरी हो गई, वो नहीं रहा। लोगों ने जैसे तैसे और उसकी लाश को संस्कार किया और वो स्थान उसके रहने से गंदा हो गया था, तो उसे जब साफ करने लगे तो उस स्थान में थोड़ी सी मिट्टी हटाने पर और सोने की असरफियाँ निकलना शुरू हो गईं। तब लोग चकित हुए और विचार करने लगे कि अरे देखो, सोने की असरफियों पर जिंदगी भर बैठा रहा और भीख मांगता रहा, दो दो पैसे के लिए दुखी होता रहा, इसे अपने ही नीचे दबी हुई संपदा का भान नहीं था। शायद कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो कि हमारे भीतर जो योग्यता है, जो क्षमता है, हम उससे अनभिज्ञ रह करके और उसे मिस करते रहें, उससे हम वंचित रह जाएं। इसलिए इस समता की साधना के दौरान हम अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का भी विचार करें कि हमारे भीतर क्या क्या चीज़ें जिनको कि हम विकसित कर सकते हैं। अगर हम गौर से देखें तो हमारे भीतर जो वीतरागता है वो हमारी सबसे बड़ी समृद्धि है। हमारे भीतर जो निर्मलता और पवित्र रहता है वो हमारी अपनी निजी संपदा है, लेकिन हम तो राग द्वेष और मलिनताओं को ही अच्छा मान करके उन्हीं में अपनी सारी क्षमता को नष्ट करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपनी उस क्षमता को पहचान करके वीतरागता और निर्मलता की तरफ बढ़ें, ऐसा हमारे भीतर भाव आना चाहिए। जितनी देर सुबह दोपहर शाम बैठ करके हम इस प्रक्रिया से गुजरें, कम से कम उतनी देर तो हमारे भीतर एक वीतराग भाव, एक निर्मलता, एक पवित्रता हमारे भीतर से उमड़नी चाहिए या हमारे ऊपर वो बरसनी चाहिए। ऐसा हम स्वयं अनुभव करें उन क्षणों में। हम अपनी एक आदत बदलें। उन क्षणों में हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें अपनी एक आदत बदलनी चाहिए। कौन सी आदत? वो ये कि हम जितने और जैसे नहीं हैं उतने और वैसे दिखना चाहते हैं। ये जो हमारी आदत है उसके चलते और हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति जैसा नहीं है और वैसा प्रकट करने लगे तो धीरे धीरे जैसा है वैसा भूल ही जाएगा। वो तो जो बाहर दिखावटी जीवन जी रहा है उसे ही श्रेष्ठ मान लेगा। उसकी अपनी जो वास्तविकता है उसे तो उसके पास देखने का वक्त ही नहीं रहे। अपन ये स्वयं विचार करें तो डू नॉट एग्जिबिट। हम अपने को प्रदर्शित ना करें, हम दिखावे में ना पड़े। ये अगर हम अपनी वास्तविकता को जानना चाहते हैं, अपनी क्षमता और योग्यता को सचमुच पहचानना चाहते हैं। जैसे हमारे भीतर क्षमा भाव है लेकिन हम गुस्सा करके दिखाते हैं कि हम गुस्सा करने से बलवान माने जाएंगे, इसलिए हम भी आप ये मत समझना कि हम गुस्सा करके नहीं जानते, हम आपको गुस्सा करके दिखा देंगे कि हम बलवान हैं। अब बताइए, इस तरह का गुस्सा करके दिखा के बलवान बनना कोई श्रेष्ठ है क्या? लेकिन हम करते हैं। हमारे पास अपने खाने पीने के लिए बढ़िया सी चीज़ें हैं लेकिन चार लोगों के बीच में तो हम ठीक नहीं माने जाते हैं, तो हमने अपने खाने पीने की चीज़ों में तो कमी कर दी है लेकिन पहनने ओढ़ने की बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाना और घर में अच्छी अच्छी चीज़ें सजाना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम बहुत पैसे वाले हैं। अरे भाई, जितने हैं उतने ही रहे ना, ऐसे अकेले दिखाने से क्या होगा? ये विचार मन के भीतर उन क्षणों में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, जैसा हूं वैसा ही सबके बीच रहूं। मैं जब अतिरिक्त कुछ दिखाता हूं तब फिर वैसा ही हो जाता हूं, फिर मेरी अपनी वास्तविकता को मैं भूल जाता हूं। कोई व्यक्ति अगर चेहरा लगा करके घूमे तो धीरे धीरे वो अपना चेहरा भूल जाता है। नहीं भूल सकता, भूल ही जाता है। जितनी देर अपन देखते हैं कोई व्यक्ति नाटक में और विभिन्न प्रकार के पात्र बनकर के और अपना रोल करता है तो उतनी देर के लिए वो ओरिजिनली क्या है ये भूल जाता होगा, जब तो कर पाता, बिना उसके तो संभव ही नहीं है। और अपन भी उन क्षणों में उस व्यक्ति को उस नाटक का एक अंग मान करके और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा ही तो ये संसार का इतना बड़ा रंगमंच है, इस पर हम अपने आप को पता नहीं किन किन रूपों में प्रकट करते हैं, जबकि हमारा अपना वास्तविक स्वरूप क्या है वो हम भूल जाते हैं। हमें इस समता की साधना की प्रक्रिया के दौरान अपने उस वास्तविक स्वरूप को अधिक मात्रा में देखना चाहिए। इन बाह्य जितने भी रूप जिनमें कि मैं अपने को अच्छा मानता हूं, उन रूपों वो तो क्षणिक हैं, वो पर्यायगत हैं, ऐसा विचार करके और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और बाहरी दिखावे से बचें। दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने वास्तविक रूप को पहचान रहा हूं और प्रदर्शन भी कर रहा हूं, दो चीजें हो ही नहीं सकती। या तो मुंह फुला लो या भी हंस लो, अपन कहते ना कि दो में से एक कुछ होगा। ऐसे ये हो सकता है कि या तो बाहर में प्रदर्शन कर लो, अपना दिखावा कर लो कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, लेकिन मैं वास्तव में जो हूं उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा हमारे भीतर और एक विचार और एक अनुभूति हमारे भीतर होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण पढ़ता था तो उसमें एक फोटोग्राफर ने अपना संस्मरण लिखा कि उसने फोटोग्राफी शुरू की, उसने एक स्टूडियो डाला तो शुरू में और क्या करे वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो उसने एक रेट लिस्ट लगाई। उस रेट लिस्ट में लिखा था कि जैसे आप दुनिया की नज़रों में हैं वैसा वाला फोटो ₹25 का, जैसा आप दुनिया की नज़रों में दिखना चाहते हैं वैसा फोटो ₹50 का, और जैसे आप हैं वैसा फोटो ₹5 का। अब उसने सोचा कि भाई ईमानदारी से काम करूं। उसने अपने जीवन के संस्मरण में लिखा कि कोई भी ₹5 और ₹20 वाला चित्र खिंचाने नहीं आया, 25 वाला, सबने 50 वाला खिंचवाया। मुझे यह आश्चर्य हुआ, मैं जैसा हूं वैसा फोटो मत खींचो, मैं दुनिया के बीच जैसा दिखना चाहता हूं मेरा वैसा फोटो खींचने वाला कोई मिल जाए। इससे होता क्या है, बाहर में थोड़ी देर के लिए और हमें थोड़ा यश प्राप्त हो जाता है, थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन सचमुच भीतर में जितना खोखलापन हमारे बना रहता है, जितना असंतोष बना रहता है, जितनी मलिनता हमारे भीतर बनी रहती है, उसको कब निकालेंगे हम। इसलिए हम तो सबसे पहले यही विचार करें कि मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ तो मैं अच्छा अपने आप को व्यक्त करूँ, मैं बुरा हूँ तो बुरा व्यक्त कर दूँ, मैं हूँ जैसा वैसा का वैसा। अगर चार लोगों को मैं बुरा हूं ये मालूम पड़ जाएगा तो अच्छा ही है, वे मुझे ठीक होने के लिए सलाह देंगे, मुझे फिर उनकी सलाह भी माननी चाहिए। मैं अच्छा हूं तो किसी के द्वारा पीठ थपथपाए जाने पर मुझे एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा हूं यही अपने आप में पर्याप्त है, इससे ज्यादा और किसी पीठ थपथपाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह यदि हम विचार करें तो वास्तव में यह समता की साधना हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती है। इतना ही नहीं, और एक कदम आगे बढ़े, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने किया है, वर्तमान में कर रहे हैं या पहले किया है, उस सब का ही फल हमें मिलता है। हम फल को पूरी तरह से स्वीकार करें, हम अपने अनुसार फल चाहते हैं, जो फल मिलता है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अगर उसे स्वीकार कर लें तो हर्ष विषाद नहीं होगा। मेरे पुण्य के उदय में मुझे सुख सुविधा मिलेगी, मैंने स्वीकार कर लिया, अब इसमें हर्षित होने की अहंकार करने की क्या आवश्यकता। ठीक इसी तरह से, लेकिन मजा देखिएगा, मेरे पुण्य के उदय में जब मुझे कीर्ति यश ख्याति मिलने लगती है तो मैं सब भूल जाता हूं। हां, फिर सारी दुनिया का सम्राट बनने की इच्छा होने लगती है, ये अहंकार। फिर मैं उस अहंकार के चलते और अपनी जो वास्तविकता है उससे भी विमुख हो जाता हूं। और या कि यह कि मेरे अनुसार जब फल नहीं मिलता, पाप का उदय आ जाता, जहां हाथ लगाओ वहीं पर घाटा, जहां हाथ लगाओ वहीं पर निंदा, जहां हाथ लगाओ वहीं पर बुराई हो रही। अरे अब ऐसी स्थिति में नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। अरे बाबा, आज नहीं किया, पहले किया होगा। अब सहर स्वीकार करो ना, संकलेश काय को कर रहे। इतनी सी प्रक्रिया है, मैं अपने पुण्य और पाप के उदय में मिलने वाले फल को समान रूप से स्वीकार करने की सामर्थ रखता हूं, पर उस सामर्थ को मुझे विकसित करना पड़े। अभी तो सुख में मैं फूल जाता हूं और दुख में म्लान हो जाता हूं, नहीं, दोनों को सहर स्वीकार करूं, दोनों में एक जैसी स्थिति बनी रहे। बहुत कठिन है भैया ये वाली साधना। सब कुछ अच्छा चलता हो तो भीतर भीतर शेर लेने का मन होता है कि देखा मेरे कारण और कितना सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये शेर लेने का मन होता है भैया, कोई भी हो, बहुत विरला साधक होगा जो इस चीज से ऊपर उठ जाए और सहज भाव से ले। और या कि मैं तो इतना सब कुछ करता हूं लेकिन कहीं कोई मेरे लिए शाबाशी ही नहीं देता, मेरी कहीं कोई ख्याति ही नहीं होती, और लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी उनकी जय जयकार हो रही है। अरे ये तो संसार ऐसा ही, सारे संसार को दोषी ठहरा दिया, अपने पाप के उदय को, अपने पाप के उदय को नहीं देखेंगे। ये अपन हमेशा करते रहते हैं। इससे उन क्षणों में कम से कम जितनी देर में सुबह दोपहर शाम दो दो घड़ी बैठ करके और उस समता की साधना कर रहा हूं, तब मैं ऐसा विचार तो करूं कि अपने जीवन में मैं हर्ष विषाद के जब अवसर आते हैं, क्योंकि ये जो स्वभाव है, ये जो एक सच्चाई है इस संसार की, उस संसार की सच्चाई को मुझे स्वीकार करना चाहिए। संसार में सुख दुख है, जन्म मरण है, इसी का नाम तो संसार है। यहां पर कोई अपना है, कोई पराया है, ये इसी का नाम संसार। मैं उस अपने पराये के बीच समता रख सकूं, मैं शत्रु मित्र के बीच समता रख सकूं, मैं सुख दुख के बीच में जन्म और मरण इन सब के बीच से ऐसे गुजरूं कि इन सब से मैं लिप्त ना हो। हालांकि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना व्यक्ति घुसे कालिक लगेगी, लेकिन मैं इतना सयाना होकर के इस संसार से गुजरूं, इन क्षणों में वो अभ्यास कर रहा हूं घंटे भर जिसमें कि इस संसार से गुजरना है, तो संसार की कालिख मुझे न लग सके, मैं संसार के बीच भी अपनी उस निर्मलता को, उस वीतरागता को बरकरार रख सकूं। मैं उसको भूलूं नहीं, बरकरार रखूं मतलब कहीं वो नष्ट नहीं होने वाली। हमारा स्वभाव कोई नष्ट नहीं कर सकता, हमारा स्वभाव हमारा है, लेकिन हमारे अपने कर्मों के कारण वो ढक जाता है और फिर हमें ही वो नहीं दिखाई पड़ता। तो हमें वो हमेशा दिखता रहे, वो हमें जब प्राप्त हो, लेकिन कम से कम मैं ऐसा ना हूं कि अपने उस स्वभाव से विमुख होकर के पूरा जीवन व्यतीत करूं। मैं अपने स्वभाव को हमेशा स्मरण में रखूं, ये हमें अभ्यास करना चाहिए। तब अगर स्वभाव की हमें अनुभूति बनी रहेगी तो ये जो हमारे राग द्वेष हैं, हर्ष विषाद हैं, ये जो शत्रु और मित्र का भाव है, ये सब हम इन पर सब पर आसानी से काबू कर सकेंगे, इनको नियंत्रण में रख सकेंगे। हम हर्ष के समय पर और विषाद के समय पर सहज भाव से अपना जीवन जी सकेंगे। ये अभ्यास, और इस अभ्यास का परिणाम क्या होता है? इस अभ्यास का परिणाम होता है कि सहिष्णुता बढ़ती चली जाती। समता की साधना करने वाले के अंदर धैर्य, सहनशीलता और सहिष्णुता, ये सब चीजें बढ़ती चली जाती। और ये जहां बढ़ती है तो फिर एक चीज आती है, मैत्री। सबके प्रति अभय का भाव। मेरे द्वारा किसी दूसरे को कहीं कोई मुश्किल खड़ी नहीं हो सकती अगर मैं समता की साधना कर रहा हूं। मेरे भीतर इतनी सहनशीलता आएगी, मेरे भीतर इस तरह सब जीवों के प्रति अभय का भाव आएगा, किसी को भी मैं क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि क्षति कब पहुंचाते हैं हम दूसरे को, जब हम सहन नहीं कर पाते। जो जितना सहनशील होगा वो उतना क्षमावान होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि वीरस्य भूषणम्। वीर कौन होगा? जो जितना सहिष्णु होगा, और जो जितना बलवान होगा वो उतना ही क्षमावान होगा, उतना ही प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में मैत्री का भाव होगा। ये चीज हमें अपने भीतर है, हमारे भीतर उसे उद्घाटित करने के लिए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं। एक छोटी सी घटना कहूं और बस, आज अपन इस चीज का अभ्यास करेंगे। आप अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके पास टाइम ही नहीं मिलता होगा शायद ना, इतना व्यस्त हो गए हैं। नहीं नहीं, उसके साथ साथ पांच मिनट, भले ही पांच मिनट कह रहा हूं, दो घड़ी का नहीं कह रहा हूं, अभी दो घड़ी थोड़ा लंबा टाइम है, नहीं मिल पाएगा। चलो एक घड़ी भी नहीं, आधी घड़ी, आधे में हूं आज, ये कहा था अपन ने, यहां से शुरू किया था। तो पांच मिनट मैं शांति से बैठा हूं और अभ्यास कर रहा हूं, इस चीज का अभ्यास कर रहा हूं कि मेरे जीवन में ये सब चीजें जो मैंने अपनी ही किसी अज्ञानता, अपनी ही किसी आसक्ति की वजह से खो दी है, या जिनको मैं भूल गया हूं, उन सबको एक बार याद कर रहा हूं कि मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं संसार में और दूसरी चीजों में कमजोर हो सकता हूं, लेकिन अपने आत्मा में तो मैं अनंत शक्ति का धारण करने वाला, ऐसा विचार अगर एक बार आ जाए तो फिर देखिए कितना धैर्य होता है, कितना हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ती चली जाती है, और सब जीवों के प्रति हमारे मन में फिर ऐसा ही अच्छा भाव, सबके कल्याण का भाव उत्पन्न होने लगता है। वो छोटी सी घटना मैंने कहीं पढ़ी थी, एक पक्षियों का जोड़ा पेड़ पर रहता था, और भी बहुत पक्षी थे उस पेड़ पर। एक दिन बहेली आया, उसने जाल बिछाया, दाने डाले, लालच में पड़ करके उन पक्षियों के जोड़े में से जो पक्षी एक मना करने पर भी, अपनी जीवन साथी के मना करने पर भी कि मत जाओ, वो बहेलिया दाने फैलाता है और जाल में फंस मत जाना, बड़े बुजुर्गों ने तो यही सिखाया है, लेकिन क्या करें, हमें भी तो हम यही सिखाते हैं हमारे देवगुरु शास्त्र कि ये संसार जिससे कि हम ऊपर उठ गए हैं या कि उठना चाह रहे हैं, तुम सावधानी से इससे गुजरना, क्योंकि फंसने के चांसेस ज्यादा, और कोई फंसाता नहीं यहां पर, हमारे अपने परिणाम हमें यहां पर फंसा देते हैं। तो अपने परिणाम संभाल के रखना, इसमें से गुजरो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाव संभाल के रखना। अगर आसक्ति और अज्ञानता हमारे जीवन को घेर लेगी तो फिर कोई हमें इसमें फंसने से बचा नहीं सकता, और वही आसक्ति की दाने पड़े हैं। मैं अभी आता हूं, मैं तो उस जाल में से अगर फंस भी जाऊंगा तो निकल जाऊंगा, ऐसा सोच करके कबूतर का जोड़ा था, कबूतर तो जो है, और जाके बैठा खाने के लिए और जाल में फंस गया। जो कबूतरी थी वह बहुत दुखी हुई, इस बात के लिए दुखी नहीं हुई कि मेरे समझाने पर भी नहीं माना। हाँ, अपन लोग तो इसीलिए दुखी होते हैं कि हमने इतनी समझाई थी और नहीं मानो, अब भोगो, ऐसा कहते हैं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोच रही वो सोच रही है क्या करें, अज्ञानता कैसी है, इतना सब जानने के बाद भी आखिर फंस गए, अब मैं क्या करूं, अब तो उपाय करने की बात है, अब इस बात पे विचार नहीं करना है कि क्यों फंस गए, नहीं कैसे बच सकता है। लेकिन बहेलिए ने अपना जाल समेटा और उसी पेड़ के नीचे आकर, और उसमें कबूतर भी है और भी पक्षी हैं, वो जाल रख दिया जिसमें फंसे हुए हैं। कबूतरी ऊपर बैठी हुई सोच रही है कि अब क्या करूं, कबूतर बोल करके अपनी भाषा में उसे इशारा करता है कि मैं फंस गया हूं, मेरे बचाने के लिए तुम चिंतित हो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अभी तो जिस वृक्ष के नीचे इस बहेलिए ने शरण ली है तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। बताइए आप, अपने मारने वाले को बचाने का भाव ये तो जिसके मन में धर्म आया होगा वो ही कर सकता, ये तो जिसके जीवन में समता भाव आया होगा वो ही कर सकता, वरना और किसी के बस का नहीं है। गुणभद्र आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा है कि धर्म उसके जीवन में आता है जो अपने मारने वाले को ही बचाने का ही भाव रखता है। और वो कबूतरी कह रही है कि अभी मुझे, वो कबूतर कह रहा है कि मुझे अभी बचाने की कोशिश मत करो, तुम्हारी शरण में उस मेरे पेड़ के नीचे ये बहेली आया है, इसकी रक्षा करो, इससे ठंड लगेगी, रात यहीं गुजारेगा। तो वो कबूतरी आस पास उड़ करके एक जलती हुई लकड़ी मुंह में दबा करके और नीचे गिरा देती है। जैसे ही जलती लकड़ी देखता है वो और लकड़ियां ला करके और सोचता है कि इसमें थोड़ी अग्नि जल जाएगी तो मैं आसानी से और रात बिता सकूंगा ठंड में। तो कबूतर इशारा करता है कि इसको यहां वहां भटकना पड़ेगा, घोंसला तोड़ के डाल दो। हां, तब वो कबूतरी अपना जो घोंसला बनाया था बहुत मेहनत से वो भी उस आग में डाल देती है। बताइए, वैसे इसका अंत तो उतना सुखद नहीं है, लेकिन क्या करें, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हृदय परिवर्तन के लिए ऐसा करना भी अनिवार्य है कि जब आधी रात उस बहेलिए को बहुत भूख लगी, तब मालूम कबूतर के मना करने पर भी वो कबूतरी वृक्ष से और नीचे उस अग्नि में गिर गई कि इसके लिए शायद क्षुधा मिटाने के लिए क्या दे सकती हूं, अपना जीवन भी इसके लिए दे दूं। कहते हैं कि बहेलिया ये देख करके चकित हो गया, क्योंकि उस कबूतर और कबूतरिनी की जो आवाज थी वो कुछ कुछ तो समझ रहा था कि ये सब जो हो रहा है वो किसी के इशारे से हो रहा है, वो जो कबूतर मैंने बांध करके रख लिया है फौरन जाल को तोड़ देता है, जाल में से कबूतर उड़ जाए ऐसा सोचता है, लेकिन वो कबूतर उस जाल में से छूटते ही साथ और जिस अग्नि में कबूतरी जाके गिरी थी उसी में जाकर वो भी गिर जाता है। अब तो बहेलिया सोच में पड़ गया, जाल अभी तो तोड़ा था, अब तो पूरी तरह से नष्ट कर देता, उसी अग्नि में जाल जला देता है, सौगंध लेता है उन दोनों के जलती हुई देह के सामने कि आज से मैं कभी भी पक्षियों को पकड़ने का काम नहीं करूंगा। परिवर्तन हो गया। कैसे परिवर्तन होता है? मन के भीतर, भावनाओं के भीतर ऐसे ही होता है। जब दूसरे के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, उसके कल्याण के प्रति हमारे मन में विचार आता है, इतनी पवित्रता हमारे मन में आती है, और वो पवित्रता तभी आती है जब हमारे मन में सहिष्णुता, जब हमारे मन में सबके प्रति समता का भाव जागृत होता है, तब जाकर के हम ऐसा कुछ कर पाते हैं। हम चाहते तो यही है कि हमारे द्वारा ये सब हो, हम भी ऐसा करें, अपने जीवन को इतना पवित्र और इतना निर्मल बनाएं कि सबके कल्याण का विचार हमारे मन में हो, पर अभ्यास करने से ही इस कठिन चीज को भी हम पा सकेंगे। हम भावना भाएं कि हमारे जीवन में भी ये जो इतनी अच्छी बातें हैं जिनको हम स्वयं अच्छा मानते हैं वो सब हमारे जीवन में भी प्रकट हों, हमारे भीतर जो क्षमता है वो क्षमता उद्घाटित हो और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इसी भावना के साथ बोलिए, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चाधिक दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गातिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष कंटक होता हो।
हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वन चारी चरते हो।
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
करते तपशैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में।
समकारस पान किया करके सुख दुख दोनों की घड़ियों में।
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां।
बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां।
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अभिनश्वर बढ़िया।
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम।
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंची गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तम नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो पापा पर वास देखो मानु शिव काली है।
छाहो द्रव्य जान देखो बंध विधि भान देखो स्वपर पिछान देखो परम प्रमाणी है।
अनुभव ताय देखो जीवों के जताय देखो अभुनस्ताय देखो भव्य उरयानी है।
जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो सुख विस्तार देखो यही जिन वाणी है।
रावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदी पसुधूप फलार्घ कई। जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे
ओम रीम परम पूजे आचार्य श्री गुरु विद्या सागर जी महाराज के समस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यूपाली।
ठीक है और एक है ना अपन अलग से ले आया था तुम लोगों को जो ऊपर